हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगली सुबह अनाही राधे श्याम से बातें करते हुए अपने बाल बना रही थी। अनाही के बाल कमर से भी नीचे थे, जिस वजह से वो जब भी बालों की केयर करती थी उसका अच्छा खासा समय निकल जाता था। और अनाही ने सोचा क्यों ना इस टाइम को भी अच्छे से यूज में लिया जाए, जिस वजह से उसने राधे श्याम को कॉल कर लिया था। पापा, मैं बोल रही हूँ ना कि आप बहुत काबिल हैं कंपनी में जॉब करने के लिए। आपको दो बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप माँ के साथ यहाँ शिफ्ट हो जाइए, फिर कोई परेशानी नहीं है। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि आप मेरे ससुराल जाकर रहने लग जाइए। गुजरात में और भी टाउन है, सिर्फ हमारा ही टाउन नहीं है। राधे श्याम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा तुम समझ नहीं रही हो, मैं अपनी बेटी की सिफारिश पर दामाद की कंपनी में काम करने कभी नहीं जाऊँगा। और अभी तो इतना कमा लेता हूँ कि अपना और तेरी माँ का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ, तो तुम क्यों चिंता कर रही हो? और जिस दिन मैं ये सब करने लायक ना रहूँ, मैं खुद तुमसे मदद मांग लूँगा। अभी तुम बेफिक्र रहो और अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दो। अनाही को पता था राधे श्याम की सोच आज भी यही है कि एक बेटी कभी भी वो काम नहीं कर सकती जो एक बेटा कर सकता था। अगर राधे श्याम को बेटा होता तो वो पूरी जिंदगी उसके सहारे बिना किसी काम किए भी बिता लेता, पर बेटी तो पराया धन होती है, उसकी तो सिफारिश भी राधे श्याम को रास नहीं आई। अनाही को बुरा लगा ये सोचकर कि वो अपने घर का बड़ा बेटा नहीं बन पाई, सिर्फ बड़ी बेटी ही बनकर रह गई। फिर भी अनाही ने धीरे से कहा, पापा मैंने कोई सिफारिश नहीं की है और वेदांत जी को तो पता भी नहीं है कि मैं चाहती हूँ आप कंपनी में काम करो। मैं आपसे बोल रही हूँ, आप पोस्ट के लिए अप्लाई तो करिए, उसके बाद तब तक मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, प्लीज पापा। राधे श्याम ने इस बार नरमी के बजाय गुस्से में कहा, मेरा कहा तुझे समझ नहीं आ रहा है और सुबह सुबह क्यों टाइम खोटी कर रही है? मुझे खेत में जाना है और लाइन चेंज करनी है, शाम को बात करते हैं, तुझे भी काम पर जाना होगा। ये बात कहकर राधे श्याम ने फोन रख दिया और अनाही आगे कुछ नहीं कह पाई। कुछ देर बाद अनाही ने अपने बालों की चोटी बनाई और माथे पर एक नीले कलर की छोटी सी बिंदी लगाई। आज उसने नीले कलर की सफ़ेद फूलों की प्रिंट वाली साड़ी पहनी थी, जिसके साथ ब्लैक कलर का फुल स्लीव्स वाला ब्लाउज था। उस साड़ी की बॉर्डर पर सफ़ेद लाइन बनी हुई थी और वो उसमें काफ़ी खूबसूरत भी लग रही थी। अनाही ने अपने मंगलसूत्र के डायमंड को गले के बीचों बीच लाते हुए आखिरी बार छोटे से कांच में अपने चेहरे को देखा। वो अपनी ज़रूरत का सारा सामान बालकनी में ले आई थी, तो अब उसे ड्रेसिंग के सामने जाने की भी ज़रूरत नहीं थी। बस वो एक बार कमरे के अंदर गई थी वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। आज रूहान भी पहले ही तैयार हो चुका था। उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी थी और उसके नीचे ब्लैक कलर की फॉर्मल पैंट। उसने अपना जैकेट पहनते हुए आखिरी बार बालकनी की तरफ देखा ताकि अनाही को देख पाए। वो मायूसी से बस मुड़ने ही वाला था कि अचानक ही उसे ग्लास डोर ओपन होने की आवाज़ आई। उसने देखा अनाही अपना पल्लू संभालते हुए बाहर आ रही हैं। अनाही ने आज पहली बार बालों को बांध रखा था, लेकिन इसके बावजूद उसकी खूबसूरती कम नहीं हुई थी। रूहान आज भी ठीक उसी तरह उसे देखता ही रह गया जैसे रोज रह जाता है। अनाही ने जब देखा कि रूहान बस उसे ही देखे जा रहा है, तो उसने जल्दी से खुद को चेक करते हुए कहा, मैं ठीक नहीं लग रही हूँ क्या? आप ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? रूहान ने जल्दी से अपनी नज़रें फेरते हुए कहा, नहीं मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। रूहान को इस तरीके से फॉर्मल वे में तैयार होते देख अनाही ने आंखें छोटी करके कहा, आप आज भी कॉलेज नहीं जा रहे हैं, अगर ऑफिस जा रहे हैं तो? वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रूहान ने कहा, नहीं एक्चुअली आज मुझे कोर्ट जाना है, जब से भाई ने बिजनेस शुरू किया है उन्होंने कोर्ट जाना छोड़ दिया है और इस तारीख पर किसी न किसी को वहाँ मौजूद होना ज़रूरी होता है, वरना वो लोग केस बंद कर देंगे, इसलिए बस मैं वहीं जा रहा हूँ। अनाही को कुछ समझ नहीं आया कि रूहान किस केस की बात कर रहा है। उसने कन्फ्यूजन में कहा, इफ़ यू डोंट माइंड तो क्या मैं पूछ सकती हूँ ये केस किस बारे में है? रूहान ने गहरी सांस छोड़ते हुए अपने हाथ पर रोलेक्स बांधते हुए कहा, ऑफ कोर्स आपका हक है, आप जो चाहे वो पूछ सकती हैं, ये केस पापा की डेथ के सिलसिले में है। अनाही ने धीरे से कहा, पर वेदांत जी बता रहे थे वो बस एक हादसा था, तो इसके लिए कौन सा केस चल रहा है? रूहान ने फीका सा मुस्कुलाते हुए कहा, हर किसी के लिए ही सिर्फ एक हादसा है, पर जिसने अपना पति खोया है उसके लिए कभी हादसा नहीं हो सकता, मैं बस उन्हीं के लिए जा रहा हूँ। रूहान के बोलने के अंदाज से अनाही को पता चला कि रूहान निवेदिता की बात कर रहा है, पर शायद उसे हिचकिचाहट हो रही है निवेदिता को मॉम बोलने में। ये बहुत अजीब बात थी, पर अनाही रूहान को देखकर बता सकता था कि वो इतना कंफर्टेबल नहीं है कि अनाही को इतना कुछ बता देगा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और वो कमरे से बाहर चली गई। दूसरी तरफ विहा आज वेदांत से पहले जग गई, क्योंकि रात को वो वेदांत से ज्यादा सो चुकी थी और वेदांत तो उसके चक्कर में आधी रात तक सो नहीं पाया था। विहा और वेदांत का चेहरा बिल्कुल करीब था, जिससे विहा उसके नैन नक्श को काफी करीब से देख पा रही थी। विहा ने आहिस्ता से उसकी दाढ़ी को छूकर खुद से कहा, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी, मुझे उस बदतमीज लड़की से बिल्कुल नहीं मिलना, पर वेदांत से झूठ भी नहीं बोलना। क्या करूं? विहा ने अपने होठों को चबाते हुए अपने मन में सोचा। तो वहीं उसके हाथ अब दाढ़ी से हटकर वेदांत की गर्दन पर घूम रहे थे, जिसका एहसास विहा को बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उसे तो उसकी टेंशन ही खाई जा रही थी। वहीं वेदांत की मानो सांसें थम गई थीं विहा के मुलायम हाथों को अपनी गर्दन पर महसूस कर। उसने भीरे से आंखें खोलकर विहा को देखा, जो उसके गले को देखते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। वेदांत की गर्दन पर चलती तेज नसों को देखते हुए विहा नया बहाना सोच रही थी। वेदांत ने एक झटके से उसका हाथ पकड़कर गहरी सांस भरते कहा, क्या कर रही हो टनाटो? विहा अपनी मोटी मोटी आंखों को और भी ज्यादा बड़ा करते हुए एक नज़र वेदांत की आंखों में देखती और जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचकर बोलती है, जी जी कुछ भी तो नहीं। विहा का चेहरा शर्म से टमाटर बन गया था, जैसा वेदांत ने उसका नाम रखा था। वहीं किचन में जाकर अनाही सोच रही थी क्या उसे रूहान के साथ कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि अब तो वो भी इस घर का हिस्सा है, उसे घर के सारे मामलों के बारे में पता होना चाहिए। रूहान कॉफी पीने के बाद हाथों में कार की चाबी लिए जैसे ही बाहर गया, अनाही लगभग दौड़ते हुए उसके पीछे गई। उसे ऐसा दौड़ता देख रूहान एक जगह रुक गया और फिर आंखें छोटी करते हुए बोला, मैडम जी क्या हुआ आपको? अनाही ने जल्दी से हल्के से मुस्कुराकर कहा, वो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आप ऐसे अकेले जा रहे हो तो। रूहान ने आंखें छोटी करके कहा, क्यों, मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ जो आपको भी चलना चाहिए मेरे साथ? रूहान के इस बात पर अनाही को गुस्सा तो बहुत आया, पर फिलहाल उसे पता था रूहान काफी अपसेट है, शायद अपने पापा को याद करके, इसलिए उसने उस पर गुस्सा करने की बजाय आराम से ही कहा, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, पर मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। रूहान ने वापस मुड़ते हुए कहा, ठीक है, इस बहाने वहाँ आप भी अपने लिए लॉयर सेलेक्ट कर सकती हैं, जो आपको अच्छी खासी एलुमिनी दिलाने में हेल्प करेगा हमारे डाइवोर्स के टाइम। अनाही ने पीछे से ही रूहान की तरफ मुक्का बनाते हुए अपने मन में कहा, एक मुक्के में सारी अकल ठिकाने आ जाएगी, पता नहीं क्या भूत सवार हुआ है दिमाग पर, डाइवोर्स डाइवोर्स डाइवोर्स, बस ये एक नाम पकड़ के रखा है।